हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन ने ये सुनते ही कि वो बाप बनने वाला था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फाइनली वो दिन आने वाला था जब जिन महाराज का वंशज जो महाशक्तिशाली था पैदा होने वाला था। इसका मतलब साफ था कि काली शक्तियों का अंत अब निश्चित था। अमन अब अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। अमन ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी तारा पर काली शक्तियों ने हमला किया था, लेकिन उनके जहर का तारा पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तारा माँ बनने लाली थी और क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी रक्षा करने लगा था। तारा के गर्भस्थ शिशु ने उस जहर को उल्टी के रूप में बाहर निकाल दिया था। इसका मतलब साफ था, तारा अब बिल्कुल ठीक थी। अमन को अब तारा की कोई चिंता नहीं थी। वो समझ चुका था कि उसे तारा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि तारा के गर्भ में पल रहा बच्चा कितना शक्तिशाली है और वो अपना तो ध्यान रख ही सकता है, साथ ही अपनी माँ का भी। अब अमन जल्दी से तारा से मिलना चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर का इंतजार किए बिना तुरंत तारा के वार्ड में प्रवेश कर लिया। उसने देखा तारा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अमन ने जाकर सीधा तारा के माथे पर किस किया और अचानक किस करते ही तारा की आंखें खुल गईं और अपने सामने अमन को देखकर वो हल्का हल्का मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ है, मुझे तो ठीक लग रहा है, आप मुझे यहाँ अस्पताल में क्यों ले आए? अमन ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम माँ बनने वाली हो। जैसे ही अमन ने तारा को ये बात बताई, तारा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। इसका मतलब साफ था कि उनके और अमन के बीच जो रिश्ता बना था वो प्यार से बना था और उसका नतीजा उसके गर्भ में था। अब तारा खुश होने लगी थी, साथ ही साथ रोने भी। तारा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। तारा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना जो वो इतने दिनों से देखती आई थी अब पूरा होने वाला था। अब तारा को एक उम्मीद नजर आने लगी थी और साथ ही एक और खुशी मिल गई थी कि वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर पाएगी, क्योंकि उसके कुल देवता ने उसे साफ साफ कह रखा था, जब तक तुम्हारे पेट में जिन महाराज अमन का अंश नहीं आ जाता तब तक तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगी। चूंकि अब तारा माँ बनने वाली थी, इसलिए इसका मतलब साफ था कि जिन महाराज अमन का अंश यानी नेक दिल इंसान का अंश अब उसके शरीर में आ गया था। इसका मतलब साफ था, तारा अब अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। तारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तारा को इस तरह रोता और हंसता देखकर अमन भी बहुत खुश हो गया था और उसने उसे कसकर गले से लगा लिया था और जल्द ही अमन ने अपने होंठ तारा के होठों पर रख दिए और दोनों ही एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार करने लगे थे। कितनी देर तक वे दोनों एक दूसरे को चूमते रहे, तभी अचानक उन्हें कमरे में किसी और के आने की आहट हुई तो वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था जो पार्क से सीधा तारा को देखने उसके वार्ड में आ गया था, क्योंकि तारा को देखे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता था। जैसे ही उसने तारा और अमन को एक दूसरे को किस करते हुए देखा, उसके तन बदन में आग लग गई, लेकिन फिर भी वो एक झूठी मुस्कुराहट के साथ तारा और अमन को मुबारकबाद देने लगा और बोला, मिसेज राठौर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। उन दोनों ने विक्रांत की मुबारकबाद सुनकर शुक्रिया अदा किया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तारा ने अमन से कहा, मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहती हूँ और करिश्मा मॉम को अपने मुंह से ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, साथ ही बगीचा भी जाना चाहती हूँ। जैसे ही तारा ने बगीचे का नाम लिया, विक्रांत रंधावा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और तारा की नज़र अचानक विक्रांत पर गई। विक्रांत को इस तरह उल्टे सीधे चेहरे बनाते हुए देखकर तारा को कुछ अजीब सा लगने लगा, लेकिन फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए विक्रांत से कहा, क्या हुआ विक्रांत जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? तारा की बात सुनकर विक्रांत ने कहा, नहीं नहीं, एक्चुअली ये बगीचा, आप किस बगीचे के बारे में बात कर रही थीं? तब तारा को एहसास हुआ कि उसने विक्रांत के सामने बगीचे का नाम ले दिया था जो सही नहीं था। अमन भी अब तारा को थोड़ा घूर कर देखने लगा। तब तारा ने अपनी बात को सुधारा और बोली, वाह, मेरा मतलब था कि मैं किसी बगीचे में थोड़ी देर टहलना चाहती हूँ, इस अस्पताल में पड़े पड़े मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तारा की बात सुनकर विक्रांत ने एक झूठी सी छोटी सी मुस्कान दी। मन ही मन बोलने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम उस समाधि में बैठे हुए बूढ़े जिन के पास जाना चाहती हो और उसे अपनी माँ बनने की खबर सुनाना चाहती हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे इस शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है, और रही बात तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे की, तो बहुत जल्द मैं इसे तुम्हारे पेट से निकालकर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं इस बच्चे को तुम्हारे और अपने बीच का रोड़ा नहीं बनने दूंगा। अब चूंकि तारा बिल्कुल ठीक थी, अमन उसे डिस्चार्ज कराकर घर की ओर रवाना हो गया। जैसे ही तारा अमन के साथ घर गई और करिश्मा जी ने तारा को इतना कमजोर देखा तो वे भी परेशान हो उठीं, और जल्दी ही उन्होंने तारा को गले से लगा लिया। गले से लगते ही तारा ने उनके कान में धीरे से कह दिया, आप दादी बनने वाली हो। जैसे ही करिश्मा जी ने ये सुना, उनकी भी आंखें हैरानी से फटी रह गईं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि इस खबर का इंतजार वे बहुत बरसों से करती आई थीं। वे बहुत पहले ही चाहती थीं कि उसका बेटा शादी कर ले ताकि उसकी औलाद सब कुछ ठीक कर देगी। इतना ही नहीं, अमन के पिताजी जो गायब हुए थे उनका पता भी लग जाएगा। बस इसी भरोसे करिश्मा जी जी रही थीं, और इसीलिए वो झूठ बोलकर कभी किटी पार्टी के बहाने से तो कभी जन्मदिन के बहाने से अपने गायब हुए पति को ढूंढने जाया करती थीं, लेकिन उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन ये बात एक दिन काली शक्तियों के मालिक अमित को पता चल गई। अमित अच्छी तरह जानता था कि अमन के पिताजी गायब हैं और वे कहाँ गए, इस बात के बारे में भी अमित अच्छी तरह जानता था। एक दिन जब करिश्मा जी अपने खोए हुए पति को ढूंढने जंगल में गईं, तब अमित भी वहां मौजूद था, क्योंकि जिस जगह अमित ने समाधि ली थी उसी जगह उसने करिश्मा जी को भी देखा था। करिश्मा जी पिछले 15 सालों से अपने पति को ढूंढने हर जगह जाया करती थीं, और आजकल तो रातों को भी, लेकिन उनका कहीं दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। जिस वक्त काली शक्तियों का मालिक अमित समाधि में था, तब उसे करिश्मा जी का एहसास हो गया। जादुई घेरे के कारण तो उसे कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सबको देख और अनुभव कर सकता था बिना आंखें खोले, हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, और तभी उसे करिश्मा जी के बारे में पता चल गया। इसीलिए अमन को पार्टी से दूर भेजने के लिए काली शक्तियों के मालिक अमित ने एक औरत को अपने वश में करके उसके फोन से एक झूठा कॉल करवाया था, और जानबूझकर उसकी माँ का जिक्र उसमें किया था ताकि अमन बिना सोचे समझे गोल्डन पैलेस के पीछे चल जाए। और हुआ भी यही। अब तारा के गर्भवती होने की खबर सुनकर करिश्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, और वे अमन के भी गले लगने लगीं। और तभी विक्रांत ने ये सारा ड्रामा देखा तो वो अंदर ही अंदर तप कर रह गया, क्योंकि बार बार वो उस बच्चे की खबर नहीं सुनना चाहता था जो बच्चा आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ये बात विक्रांत रंधावा अच्छी तरह जानता था। हालांकि विक्रांत रंधावा एक बहुत ही सुलझा हुआ किस्म का लड़का था, लेकिन उसके अंदर राक्षस के अंश के चले जाने के बाद अब वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी बन चुका था।
इतना शातिर बन चुका था कि वो कुछ भी कर सकता था, और वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर तारा के बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो परी और जिन का बच्चा सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, और वो आसानी से उस राक्षस जो परी लोक में था का सामना कर सकता था और अपनी माँ का बदला ले सकता था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसीलिए विक्रांत को उस बच्चे को तारा के पेट में ही खत्म करना था, इसलिए उसने उसके लिए रास्ता निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तारा को भी अब अपनी शक्ति प्रयोग करने की इजाज़त मिल चुकी थी, साथ ही साथ वो बच्चा खुद ही एक शक्तिशाली था। अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे खुद सबक सिखा सकता था।